हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 40। अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। महत्वपूर्ण बात है, ये श्लोक भगवान क्यों बता रहे हैं। पिछले श्लोक में अगर आपको याद हो, हमने चर्चा किया था कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है और तत्पर है, यानी अपनी लगातार भगवान की सेवा में लगा हुआ है और साथ साथ संयत इंद्रिय है, अपने इंद्रियों को भगवान भोगों से निवृत्त किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान को लाभ कर सकेगा। और वो ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान कृष्ण है और मेरा उनसे एक प्रेममय संबंध है। ये तीन चीजें हमें ज्ञान के द्वारा होगा और ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति को शांति प्राप्त होगी, शांति के और साथ साथ सुख प्राप्त होगा। अब एक बात है अज्ञ। अब आप कहेंगे कि लोगों को तो काफी ज्ञान दिखता है, हमको बहुत सारे लोग, हम PhD और BTech MTech ये सब कुछ होता है, तो अज्ञ क्यों बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर बताया है, जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान रखता ही नहीं है, जिसे अपने जीवन के किसी उच्चतर उद्देश्य के बारे में पता ही नहीं, कहीं से सुना ही नहीं उसने, तो ऐसा व्यक्ति अज्ञ है। और दूसरा श्रद्धाविहीन, यानी कि मान लीजिए उसने भगवद गीता शास्त्र सुने भी तो भी वो उन पे श्रद्धा नहीं रखता। इवन कभी कभी तो लोग शास्त्र की स्पष्ट बातों को भी स्वीकार नहीं करते हैं, जैसे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये जगत दुख का घर है, स्पष्ट भागवत में गीता में बताया गया है, फिर भी स्वीकार नहीं करता करते हैं लोग। भगवत गीता को पढ़ने के बावजूद भी लोग स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण भगवान है। तो इस प्रकार के लोग जो संशय करते रहते हैं शास्त्रों में, पर्टिकुलरली भगवत गीता में, भगवान की वाणी में, वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। और ना सिर्फ, और दूसरा चीज है कि इस जगत में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी कारण इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ऐसा व्यक्ति का जीवन इंद्रिय तृप्ति के द्वारा गियर्ड होता है। गियर्ड का मतलब उसका सारे कार्य इंद्रिय तृप्ति के को पूरा करने में होते हैं। तो अगर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है और इंद्रिय तृप्ति करता रहता है, तो भगवान गीता में आगे बताते हैं कि यही हमारे दुखों का कारण है। जो भी हम भोग कर रहे हैं उसी से हमारे दुखों की निर्माण हो रहा है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कारण व्यक्ति अपने ही दुखों की फैक्ट्री को चलाता रहता है। और अगर भगवान की बात में श्रद्धा नहीं है कि मेरे भजन करने से मेरा दुखों की निवृत्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा। तो इस जीवन में भी भोग करने से हमें दुख प्राप्त होगा और आगे भी हमारे कष्टों का निर्माण होता चला जाएगा, इसलिए भगवान यहां बोल रहे हैं। तो इसके लिए व्यक्ति को प्रमाणिक शास्त्रों से, भगवद गीता से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और श्रद्धा से विश्वास के संग उस पथ पे, भक्ति के पथ पे चलना चाहिए, जैसे जो है हरे कृष्ण मंत्र का जप। तात्पर्य, भगवद गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग सर्वोत्तम इसलिए है क्योंकि भगवान ने स्वयं बोली है अपने श्रीमुख से और परम कल्याण के लिए बोली है। परम रहस्य कि हम हैं कौन, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम हमारी गति क्या होगी, ये सब बताया है भगवद गीता में। जो लोग पशुतुल्य हैं उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उसका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। तो इस बात की चर्चा हमने पहले भी करी थी पिछले श्लोक में कि व्यक्ति भगवद्गीता तो पढ़ता है लेकिन भगवद्गीता पढ़ने के बाद उसको अपने जीवन में अमल नहीं करना चाहता। जैसे कि कुछ लोग शराब सिगरेट पीते रहेंगे और भगवद गीता पे प्रवचन देने का प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्ति, जैसे मैं एक व्यक्ति को मिला था, वो सिगरेट पी रहे थे और बोलते हैं मैं नहीं मानता था कि ये तमोगुण में है। तो तुम्हारे मानने से क्या नहीं होता, ये तो निश्चित रूप से बात है कि हमारे तमोगुण का मतलब होता है अहंकार, क्षमा कीजिएगा अंधकार, और आप सिगरेट पी रहे हो, जानते हो कि शरीर से इसको नुकसान होता है, कैंसर हो जाता है, फिर भी ऐसी वस्तु हम ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या तमोगुण नहीं है। तो लोग भगवद गीता की बात सुनने के बावजूद भी इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन नहीं करना चाहते हैं, तो ये उनका अश्रद्धा है। भगवान का धाम है, भगवान के हम अंश हैं और हम अगर उनकी भक्ति करते हैं तो उनके धाम में जाने के योग्य बनेंगे, इन सब बातों में लोगों की श्रद्धा नहीं होती। या फिर ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, भगवान के नाम से सब कुछ होता है, भगवान के नाम से सब कुछ होता है, लेकिन उनसे पूछो कि भाई नाम जप करेंगे तो नाम जप करने में कोई रुचि नहीं रखते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण जो थे वो बचपन में बहुत अच्छे थे, लेकिन बड़े होकर के बहुत स्त्री लंपट हो गए, बहुत गड़बड़ हो गए, और इसलिए उनकी बात को नहीं सुनेंगे। या फिर कुछ लोग बोलते हैं गीता जो है कृष्ण ने नहीं बोली है, भगवान ने नहीं बोली है, बल्कि अंदर को शिव बाबा है उन्होंने बोली है, जबकि भगवद गीता के कहीं भी एक श्लोक में भी शिव बाबा का नाम नहीं आया। तो ऐसे लोगों को किसी बाबा पे किसी व्यक्ति पे विश्वास होगा, लेकिन भगवद गीता यथारूप जैसा भगवान बता रहे उस पर विश्वास नहीं होगा। तो ऐसे लोग भी कृष्ण भावना को प्राप्त नहीं कर सकते। और कृष्ण भावना को प्राप्त करने का एक मुख्य लक्षण यह है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो कृष्ण केंद्रित होना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसका जीवन तत्पर होना चाहिए, और ये बहुत मुख्य लक्षण है। वे नीचे गिरते हैं, नीचे गिरते हैं मतलब पशुओं की योनि में जाते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। इस बात को श्रीमद् भागवत में भी लिखा गया है, स्थानाद भ्रष्टाद पतन्त्यतः, कि व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि के कार्य करता रहे, बहुत अच्छे से पालन भी कर रहा है, लेकिन अगर भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर उसका पतन हो जाता है, उसकी अधोगति हो जाती है। इस बात को भागवत में सातवें स्कंद में बोला गया है, विप्राद दुष्यद गुण युताद अरविंद नाभा पादारविंद विमुखात स्वपचा परिष्टम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न भूरि न तु भूरि मानः। वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण के ब्राह्मणोचित 12 गुणों से युक्त है, समदम तितिक्षा इत्यादि, लेकिन लेकिन वो बहुत अहंकारी है तो अपना ही उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन एक नम्र भक्त जो अपने मन वचनों कर्मों को कृष्ण को समर्पित है, वो अपना क्या सारे कुल का उद्धार कर सकता है। तो हमने यहाँ देखा कि जो व्यक्ति को भगवान पर विश्वास है वो भगवान की सेवा करने में तत्पर होगा, ये विश्वास का लक्षण है। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुँच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों का कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। एक सिंपल सा उदाहरण इसको समझिए। मान लीजिए हमें कोई बीमारी है और उसकी एक परंपरागत दवा है, बीमारी का कारण फिक्स है और उसकी परंपरागत दवा। जैसे मैं उदाहरण दूं कि जब भी मुझे कफ होता है तो मैं 64 प्रहरी पीपल, वैद्यनाथ कंपनी है, मैं सबको प्रमोशन नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं बता रहा हूं कि 64 प्रहरी पीपल नाम की दवा जो कई सालों से चलती आ रही है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार है, तो उसको मैं ग्रहण करता हूं। और उसका वो कैसे कार्य करती है वो हमको पता नहीं है, लेकिन परंपरा में ये दवाई है तो इसको हम स्वीकार करते हैं जिससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है उसके परामर्श के अनुसार। तो उसी प्रकार से भगवद गीता का ज्ञान और हरे कृष्ण मंत्र ये स्टैंडर्ड मेडिसिन है। बाकी किसी से हमारा उद्धार होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन इससे महान भक्तों ने, हरि नाम से और हरि कथा से महान भक्तों ने अपना उद्धार करवाया है। और हमारे लिए तरीका हमको बता के गए हैं कि किस प्रकार से हम भी इस जगत से मुक्त हो सकते हैं अगर हम इस पथ का अनुगमन करते हैं पूर्वगत आचार्यों के अनुसार। और अगर हम ऐसा करते हैं, हरि नाम का शरण लेते हैं, हरि कथा का शरण लेते हैं नियमित रूप से, तो निश्चित रूप से हम भव सागर को तर जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबदनन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश के रूप में अपने स्वरूप को ज्ञान पहले ही हो जाता है, अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, संशय होता क्यों है? संशय हमारे अहंकार के कारण होता है, मिथ्या अहंकार के कारण हम अपने आप को शरीर मानते हैं और इसी वजह से हमारे ज्ञान ढका रहता है भगवान के संबंध में। संशय होने लगता है, भगवान क्या वाकई भगवान है, या अगर भगवान है भी तो क्या मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन जब हम भक्ति करते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी श्रद्धा का विकास होता है, तो अपने आप ये हृदय में श्रद्धा बढ़ जाती है कि अवश्य राखी वे कृष्ण इति विश्वास पालन, अपने आप ही श्रद्धा बढ़ जाती है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण हमेशा मेरी रक्षा करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये दिव्य ज्ञान हृदय में अपने आप प्रकट होने लगता है और कृष्ण की सेवा का उत्साह, कृष्ण के चरणों में अनुराग, ये व्यक्ति के बढ़ने लग जाता है। एक चीज बताना मैं भूल गया इस सारे सेक्शन में कि श्रद्धा को उत्पन्न कैसे होती है। श्रील प्रभु भगवान कपिल देव इस चीज को तीसरे स्कंद में समझाते हैं कि जब व्यक्ति सताम भक्तों का संग करता है, सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायन कथा तद जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। जब भक्तों के संग में आकर के हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो इसके द्वारा पहली बात तो ये होता है कि भगवान की कथाएं बड़ी अच्छी लगती हैं। आपने देखा होगा कि हमारा अनुभव है कि हम जब पढ़ते हैं तो भले उतना अच्छा नहीं लगे, लेकिन सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भागवत का सिद्धांत है कि जब हम आते हैं भक्तों के संग में और हरि कथा की चर्चा करते हैं तो व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है, कर्ण यानी कानों को अच्छा लगता है और हृदय को अच्छा लगता है। और साथ साथ क्या होता है, हमारे हृदय में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या होगा, श्रद्धा का सृजन हो जाता है, श्रद्धा जग जाती है भगवान के बारे में, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा जगती है और भगवान के चरणों में रति होती है और उसके बाद भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति होती है। ये चर्चा हमने पहले भी करी है कि श्रद्धा और प्रेम भक्ति में केवल प्रगाढ़ता का अंतर है, लेकिन तरीका क्या है, भगवान के भक्तों के संग में आकर बार बार सुनना। वैसे तो आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से हम सुन रहे ही हैं, तो जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना अधिक हमें भगवान के चरणों में प्रेम होगा। लेकिन मुद्दा यही है कि भक्तों के मुख से सुनना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य को चर्चा कर रहे हैं ताकि हम लोग प्रभुपाद के मुख से सुन सकें और फिर हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इसके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि भगवद गीता के पहले बहुत सारे संस्करण हैं लेकिन लोग पढ़कर भक्त नहीं बने, क्योंकि जो उसके तात्पर्य देने वाला है उसका खुद का विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और परंपरा में ज्ञान दे रहे हैं, भगवान पे पूरा विश्वास है, तो उसके लिए उनके तात्पर्य को पढ़कर सुन करके हमारी भक्ति भी बढ़ जाती है। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। संशय क्या आ रहा है, क्या मुझे युद्ध करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये पुण्य होगा या पाप होगा, तो कैसे संशय निपट जाएगा। जब व्यक्ति समझ जाएगा कि मैं, जैसे अर्जुन यहां समझ जाएंगे कि कृष्ण चाहते हैं इस युद्ध को और मैं, मेरा भगवान का अंश होने के नाते मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, तो फिर कोई संशय नहीं रह जाएगा भगवान इस युद्ध को करने में। इस युद्ध को जीतने और हारने का प्रयास नहीं करेंगे अर्जुन, अपितु युद्ध लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि युद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं, भगवान इससे प्रसन्न होंगे, बस यही बात है। तो जब व्यक्ति भक्ति में स्थित हो जाता है, इस ज्ञान से युक्त हो जाता है, तो वो कोई भी कर्म करने में झिझकेगा नहीं अगर वो ये देख पाएगा कि इस कर्म से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो प्रकार के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ यानी वस्तुओं को अर्पित करना, और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, यानी कि स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि के लिए अगर व्यक्ति दान करता है तो फिर वो भौतिक हो जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति में ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है, यानी वही क्रियाएं, वही द्रव्य, वही वस्तुएं जब हम ज्ञान से युक्त होकर कि मैं कृष्ण को समर्पित कर रहा हूं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, तो फिर वो पूर्ण यज्ञ हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। तो यानी कि एक है ब्रह्म साक्षात्कार कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा, इसके लिए क्रिया करना, ज्ञान योग इत्यादि की क्रियाओं करना। दूसरा भगवान को समझना, और वो भगवान को हम भक्ति के द्वारा समझते हैं। और ये भी है कि जब भगवान को समझते हैं तो हम अपने आप को भी अपने आप समझ लेते हैं। जैसे अगर सूर्य उगता है तो हम आसपास की वस्तुओं को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं और अपने आप को भी देख लेते हैं। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। इसको मैंने अभी समझा दिया सूर्य के धारण के द्वारा। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। वो एग्जाम्पल है, सूर्य उगता है तो आप अपने आप को भी देखते हो, सूर्य को भी देख लेते हो। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है, जैसे कि सूर्यदेव को उन्होंने ज्ञान दिया लाखों साल पहले, और फिर भी उनको बात याद थी कब दिया, कहाँ दिया, और अर्जुन भी उपस्थित था कि नहीं, सब कुछ बात पता था। और जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, जो उनके जन्म कर्म की दिव्यता को समझता है वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं ने, हाँ, जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। यानी कि जैसे हमारा शरीर है और हमारा शरीर भौतिक है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, लेकिन इस जगत में रहते रहते, कई जन्मों से हमारे रहते रहते, हमारी जो चेतना है वो आवृत हो गई, कंडीशनड हो गई है इस प्रकार से सोचने के लिए कि हम सोचते हैं इस प्रकार से हम कामुक हैं, इस प्रकार से हम भौतिक जगत में मरते जीते हैं, ऐसे भगवान भी मरते जीते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम है और इसको हमें भगवद्गीता सुन करके समझ क्लियर करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। ये तो मैंने अभी चर्चा किया था, अगर हम प्रामाणिक भक्तों से सुनते हैं तो हमारा ज्ञान नष्ट होता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। यानी कि जो व्यक्ति नियमित कर्म करता है शास्त्रों के अनुसार और उन कर्मों को कृष्ण को समर्पित करता है तो वो कर्म यज्ञ हो जाते हैं। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। यानी कि इन सभी यज्ञों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम आत्म साक्षात्कार की प्रगति करें, के पथ पर प्रगति करें। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद्गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवद्गीता के उपदेश इस धराधाम पर आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद्गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवद्गीता के अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। बहुत सुंदर लाइन है। अगर आपने भगवद्गीता की इस भूमिका में जो लेक्चर हमने शुरू किए, यानी भूमिका पढ़ते समय से अगर आप में ये श्रद्धा है कम से कम किंचित मात्र भी कि कृष्ण भगवान है और भगवद्गीता में जो भी लिखा है वो अक्षरश सत्य है, तो आप भगवद्गीता पढ़ने मात्र से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है। आप सभी भक्तों को श्रद्धा तो है ये बात, तो अगर हम इस प्रकार से भगवद्गीता का अध्ययन करते हैं तो भगवान की कृपा से हम लोग पहले दिन से ही मुक्तावस्था में हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं है वो कितनी बार भी गीता पढ़ेगा उसे कोई फायदा नहीं होगा। इट्स लाइक एक बोतल है, बोतल की में दवाई पड़ी हुई है, ढककर नहीं खोला तो उस बोतल को कितना भी चाटे व्यक्ति उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन अगर ढक्कन खुल गया तो जैसे जैसे दवा खाता जा रहा है उसकी बीमारी ठीक होती जा रही है। तो ढक्कन खुलने का अर्थ क्या है? कृष्ण को भगवान मानना सिद्धांतिक रूप से। और जब इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण को भगवान मानते हुए भगवद गीता की बातों को एज इट इज स्वीकार करते हैं, यथारूप स्वीकार करते हैं जैसे भगवान ने बताया है, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है,
तो निश्चित रूप से हमारी मुक्ति अवश्यम भावी है, बल्कि हम मुक्त अवस्था में हैं ही। और इसी कारण से व्यक्ति सुख का अनुभव करता है भगवद्गीता को सुन करके, और ये भी महसूस करता है कि उसका ज्ञान नष्ट हो रहा है। तो आज भगवान की कृपा से चौथा अध्याय पूर्ण हुआ, आगे हम पांचवा अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्णा।